नमस्कार भारत, 11 मार्च दिन शुक्रवार, मैं हूं पंकज प्रियदर्शी। दिल्ली में यमुना नदी के किनारे श्री श्री रविशंकर का विवादित कार्यक्रम आज से। संस्था ने कहा कार्यक्रम तय समय पर होगा। सरकार ने कहा सेना की मदद पर राजनीति न की जाए।
क्या हम सेना का उपयोग कहीं कुंभ मेले में या अन्य और ऐसे कार्यक्रमों में नहीं इस्तेमाल करते हैं? इसमें क्या गलत है? अगर सेना हमारी सहयोग करती है तो मैं समझता हूँ उसे।
राज्यसभा में रियल एस्टेट बिल हुआ पास, सरकार ने पारदर्शिता का दावा किया। बिहार में दलितों की बस्ती में लगी आग, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी।
8 तारीख को शाम 7 बजे के लगभग कोई अज्ञात लोग 4-5 के आदमी से आए। हम लोग रोड पर बैठे थे सब, और पीछे से माचिस मार के चला गया। हम लोग कुछ दौड़े तो जब तक भाग गए।
होगी अखबारों की समीक्षा भी, लेकिन पहले सुनिए बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार अशोक कुमार से। कई दिनों से विवादों में रहा आर्ट ऑफ लिविंग का सांस्कृतिक कार्यक्रम आज से दिल्ली में यमुना नदी के किनारे होगा। श्री श्री रविशंकर के इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। हालांकि कई पर्यावरणविद कह रहे हैं कि इस कार्यक्रम से यमुना के पर्यावरण को नुकसान होगा। इसी को देखते हुए ग्रीन ट्रिब्यूनल ने श्री श्री रविशंकर पर 5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है, जो उन्हें आज जमा करना है। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने छोटे हथियारों के साथ और अधिक परमाणु परीक्षण करने का आदेश दिया है। सरकारी मीडिया के अनुसार किम ने यह आदेश उस वक्त जारी किया जब वो गुरुवार को बैलिस्टिक मिसाइल के प्रक्षेपण की निगरानी कर रहे थे। किम ने इससे पहले कहा था कि उत्तर कोरिया के वैज्ञानिकों ने ऐसे छोटे परमाणु हथियार बनाए हैं जो बैलिस्टिक मिसाइल पर फिट हो सकते हैं। अगर ये सच है तो इससे दक्षिण कोरिया और क्षेत्र में अन्य देशों, खासकर अमेरिका की सुरक्षा के लिए खतरे पैदा होंगे। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून ने संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों पर लगने वाले यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर कड़े कदम उठाने की अपील की है। उन्होंने सुरक्षा परिषद में बोलते हुए इस मुद्दे से निपटने के लिए कई प्रस्ताव दिए, जिनमें उस पूरी टुकड़ी को इलाके से निकाल देना भी शामिल है जिसके सैनिकों पर बार बार ऐसे आरोप लगे हों। रूस, मिस्र और सेनेगल ने इसका विरोध किया। बान की मून ने कहा,
and abuse by United Nations personnel demands nothing less than decisive।
शांति सैनिकों के यौन उत्पीड़न और शोषण पर निर्णायक और कड़े कदम उठाने ही होंगे। मैं सदस्य देशों के साथ मिलकर इस पर आपराधिक कृत्य से निपटने के लिए काम करूंगा, ताकि जिन लोगों का भरोसा हम पर है उन्हें यकीन दिलाया जाए कि ये संस्था संकट में घिरे लोगों के लिए उम्मीद की किरण है। ये थे बान की मून के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमरीकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने इन खबरों की पुष्टि की है कि विशेष अमरीकी बलों ने इराक में चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट के रासायनिक हथियार विशेषज्ञ को पकड़ा है। पेंटागन के मुताबिक उसने आईएस की हथियार क्षमताओं के बारे में अहम जानकारी दी है। व्हाइट हाउस ने बीबीसी को बताया है कि अमेरिका ब्रिटेन के साथ अपने विशेष संबंधों को बहुत महत्व देता है। ये बयान अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के उस बयान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने ब्रितानी प्रधानमंत्री डेविड कैमरन की विदेश नीति की कड़ी आलोचना की थी। अमेरिकी मीडिया का कहना है कि रिपब्लिकन उम्मीदवारी की रेस से हटने वाले बेन कार्सन अब तक रेस में आगे चल रहे डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन करेंगे। ये खबर फ्लोरिडा में होने वाली रिपब्लिकन डिबेट से ठीक पहले सामने आई है। पिछले हफ्ते ही ट्रंप को न्यूजर्सी के गवर्नर क्रिस क्रिस्टी का समर्थन मिला था। बीबीसी समाचार।
तारीख 11 मार्च दिन शुक्रवार। नमस्कार भारत में, आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पंकज प्रियदर्शी। आप ये कार्यक्रम रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी सुन रहे हैं लाइव। दिल्ली में यमुना नदी के किनारे श्री श्री रविशंकर की संस्था आर्ट ऑफ लिविंग का विश्व सांस्कृतिक महोत्सव आज से शुरू हो रहा है। पर्यावरण की चिंताओं के अलावा अन्य कई विवादों को लेकर यह कार्यक्रम पिछले कई दिनों से सुर्खियों में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने आयोजकों पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, जिसकी समय सीमा आज तक की है। श्री श्री रविशंकर के हवाले से मीडिया में कल खबर आई थी कि वो जुर्माना नहीं भरेंगे और अपील करेंगे, लेकिन आर्ट ऑफ लिविंग के प्रवक्ता ने कहा है कि वो कानून का पालन करेंगे। एक रिपोर्ट के साथ हैं प्रभात पांडे।
आर्ट ऑफ लिविंग के 35 साल पूरे होने के मौके पर दिल्ली में आज से शुरू हो रहे विश्व सांस्कृतिक महोत्सव की तैयारियां अंतिम दौर में हैं। यह कार्यक्रम शुरुआत के पहले ही कई तरह के विवाद में घिर गया। सबसे बड़ा सवाल इस आयोजन को लेकर यमुना और पर्यावरण पर होने वाले असर को लेकर उठा। इसे लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT ने आयोजकों पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया, जिसे जमा करने की डेडलाइन आज तक बढ़ा दी गई है। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर के हवाले से मीडिया चैनलों में खबर आई थी कि वो जुर्माना अदा नहीं करेंगे और उसके खिलाफ अपील करेंगे, लेकिन महोत्सव के प्रवक्ता संजय कुमार ने बताया कि सभी विवादों को कानून के मुताबिक हल किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि कार्यक्रम तय वक्त पर यानी आज शाम को 5 बजे शुरू होगा।
मामला अभी भी सब ज्यूडिस है, इसीलिए उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। आर्ट ऑफ लिविंग शुरू से ही कानून को लेके, दुनिया के पर्यावरण को लेके, सबको लेके बहुत ही सफल तरीके से और बहुत ही संवेदनशील तरीके से उन मामलों का निपटारा किया है और उसको हल करने में अपनी भूमिका निभा रहा है। वास्तविकता यह है कि भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे और भव्य समारोह का शुरुआत होगा।
विश्व सांस्कृतिक महोत्सव के आयोजकों ने पहले इसमें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के हिस्सा लेने की भी जानकारी दी थी, लेकिन सोमवार को समाचार एजेंसी PTI ने खबर दी कि राष्ट्रपति कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेंगे। आयोजन के लिए यमुना पर पंटून पुल बनाने के लिए सेना के इस्तेमाल को लेकर भी विवाद हुआ। ये मुद्दा संसद में भी उठा। इसे लेकर विपक्षी दलों ने सरकार से सवाल पूछे। इसे लेकर कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने कहा,
जिस तरीके से भारत की सेना का इस्तेमाल हो रहा है, ये निश्चित तौर पर आपत्तिजनक है। सरकार ने श्रीश्री के इस उत्सव के लिए भारत की सेना को पूरी तरह से झोंक दिया है। सेना का काम ये नहीं है, सेना का काम देश की रक्षा करना, देश के नागरिकों की रक्षा करना, लेकिन ये सरकार बार बार ये सब करती हुई दिख रही है।
हालांकि आर्ट ऑफ लिविंग का कहना है कि ऐसे आयोजनों में सेना पहले भी मदद करती रही है। आयोजकों का दावा है कि कार्यक्रम में 155 देशों के लोग हिस्सा लेंगे और भारतीय संस्कृति के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। महोत्सव के प्रवक्ता संजय कुमार,
इसमें 155 देशों से 35 लाख के करीब लोग 11 से 13 मार्च तक के बीच में शामिल होंगे। पूरे दुनिया के हर क्षेत्र के लोग, चाहे वो राजनीति से जुड़े हुए हों, अर्थव्यवस्था या व्यापार से जुड़े हुए हों, संस्कृति और अध्यात्म से जुड़े हुए हों, या धर्म या संप्रदाय से जुड़े हुए हों, सब लोग यहाँ एक साथ मिलेंगे और तमाम तरीके के पूरी दुनिया के वाद्य यंत्र, नृत्य, संगीत, उन सब के माध्यम से पूरी दुनिया को एक पूरा आह्वान किया जाएगा कि पूरा संसार एक परिवार है।
विश्व सांस्कृतिक महोत्सव के आयोजकों का दावा है कि अभी तक दुनिया में कहीं भी इतनी बड़ी स्टेज नहीं बनाई गई। आयोजकों का ये भी कहना है कि दुनिया भर से जुटने वाले लोग 3 दिन के कार्यक्रम में तनाव से मुक्ति हासिल करेंगे, लेकिन कार्यक्रम शुरू होने के पहले जिस तरह एक के बाद एक विवाद खड़े हुए, उसने आयोजकों को जरूर तनाव में डाल दिया होगा।
श्री श्री रविशंकर के कार्यक्रम को लेकर विपक्ष ने भी सरकार को घेरने की कोशिश की और संसद में भी ये मुद्दा उठा। हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने इन सवालों और आयोजन को लेकर हुए विवाद पर केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा से बात की।
देखिए, जहाँ तक संस्कृति पर्यटन दो विषयों की बात है, जब इस कार्यक्रम का जो ध्येय है, जो एम एंड ऑब्जेक्टिव्स है, टू शोकेस वर्ल्ड्स इंडियन रिच हेरिटेज एंड कल्चर, और मैं समझता हूँ ये हमारा धर्म भी है, हमारा दायित्व भी है कि हम भारत की घनी संस्कृति को विश्व के कोने कोने तक पहुँचाएं, और उसका एक अच्छा मौका हमें मिला है जिसमें 150 कंट्रीज से लगभग लोग यहाँ पर आए हैं इस फंक्शन में अटेंड करने, जिसमें हमें भारत की सभ्यता को दिखाने का, भारत की कल्चर ट्रेडिशन, भारत का आर्ट, फोक, डांस सबको दिखाने का मौका मिलेगा। पर्यटन की दृष्टि से भी इसमें काफी बदलाव आने वाला है, तो मैं समझता हूँ कि इसके उद्देश्य में कोई कमी नहीं है।
लेकिन डॉक्टर साहब, ये जो बात की जा रही है कि आखिर यमुना का किनारा ही क्यों चुना गया, पर्यावरण का किस तरह से ध्यान नहीं रखा गया, आपको क्या लगता है कि ये मामले को तूल दिया जा रहा है या ये वाकई गौर करने वाली बातें हैं?
जहाँ तक मैं बात कह रहा हूँ पर्यावरण की और किसी अन्य विषयों की, मैं भी उन्हीं सभी पर्यावरण प्रेमियों के साथ हूँ कि किसी भी तरह हमारा पर्यावरण खराब ना हो। तो मैं समझता हूँ दोनों के बीच का एक मध्य मार्ग भी तो निकाला जाए कि जिससे हमारे पर्यावरण को भी डिस्टर्बेंस ना हो और हमारा जो इसका मकसद है उसको को आयोजन करने का वो मकसद भी पूरा हो जाए। तो मैं समझता हूँ दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एक रास्ता निकालना हो, तो रास्ता निकाल भी लिया गया है। हाँ, श्री जी ने हमने एक भी पेड़ नहीं काटा है, तो हमें उस बातों पर विश्वास करना चाहिए, कुछ गलत भी नहीं।
आपके मंत्रालय की तरफ से आर्ट ऑफ लिविंग को जो मदद दी गई है उसके बारे में भी बड़े सवाल पूछे जा रहे हैं, उसे लेकर आप क्या कहेंगे?
हमारा मंत्रालय
कि एक विभाग है जिस विभाग के तहत एक कमेटी है जो लगभग हमारे पास 100 संस्थाओं से हर साल आवेदन आते हैं और अब से नहीं पिछले सालों से हम ऐसा करते चले आ रहे हैं, जिसमें 1 करोड़ रुपए से लेकर और 5 करोड़ रुपए तक की राशि हम उन संस्थानों को देते हैं जो भारत की संस्कृति आर्ट क्राफ्ट को शोकेस करते हैं और जिनकी राष्ट्रीय उपस्थिति है, नेशनल प्रेजेंस है। ऐसा नहीं कि हमने किसी संस्था को हमने दिया है, हमने स्पिक मैके को दिया है इससे पहले 2 करोड़ और इससे अधिक 3-3 करोड़ रुपए तक की राशि हमने और संस्थाओं को दी है। उनको व्यक्ति विकास केंद्र जो ये संस्था है उस संस्था को ये फंक्शन ऑर्गेनाइज करने के लिए राशि नहीं दी गई है, ये जो पूरे जो साल भर वो कार्य करते हैं उस काम के लिए राशि।
सेना ने जिस तरह से पुल बनाने में मदद की थी उसको लेकर भी कई सवाल उठे, संसद तक में ये मामला उठा।
देखिए मैं समझता हूँ इस नजरिए से देखना चाहिए कि भारत की संस्कृति को शोकेस करने का एक अच्छा मौका हमें मिला है, हमें इस पर राजनीति नहीं लानी चाहिए। क्या हम सेना का उपयोग कहीं कुंभ मेले में या आपदाओं में या अन्य और ऐसे कार्यक्रमों में नहीं इस्तेमाल करते हैं? इसमें क्या गलत है? अगर सेना हमारी शांति की ऐसी जगहों पर अपना सहयोग करती है तो मैं समझता हूँ उसे अन्यथा ना लिया जाए।
डॉक्टर महेश शर्मा से बात कर रहे थे हमारे सहयोगी वात्सल्य राय। और अब चर्चा करते हैं बैंकों के करोड़ों रुपये के बकाया कर्ज को लेकर विवादों में घिरे सांसद विजय माल्या की। विजय माल्या ने अब से कुछ ही देर पहले एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं। एक ट्वीट में उन्होंने कहा है कि वे इंटरनेशनल बिजनेसमैन हैं, वे भारत से बाहर आते जाते रहते हैं, वे भारत से भागे नहीं हैं और न ही वे भगोड़े हैं। उन्होंने आगे ट्वीट किया है कि एक भारतीय सांसद होने के नाते वे देश के कानून का सम्मान करते हैं और उसका पालन भी करेंगे। उन्होंने लिखा है कि उन्हें भारत के कानून व्यवस्था पर भरोसा है लेकिन मीडिया में कोई ट्रायल नहीं होना चाहिए। उन्होंने कई मीडिया चैनलों पर भी आरोप लगाए हैं और कहा है कि मीडिया के मालिकों को ये नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने उनसे कई बार फायदा लिया है जो दस्तावेज के रूप में उनके पास मौजूद हैं। उन्होंने ट्वीट किया है कि एक बार मीडिया किसी के पीछे पड़ जाती है तो इसमें सच्चाई और तथ्य जलकर राख हो जाते हैं। और श्रोताओं को बता दें कि कुछ ही दिन पहले भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि उद्योगपति विजय माल्या देश से बाहर जा चुके हैं। विजय माल्या की कंपनियों पर बैंकों का दिया हजारों करोड़ रुपए का कर्ज बाकी है और वो उसे चुकाने में डिफॉल्ट कर चुके हैं। देश के 17 बड़े बैंकों ने माल्या के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और कहा था कि माल्या का पासपोर्ट जब्त कर लिया जाए।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
कल राज्यसभा ने रियल एस्टेट बिल 2016 पारित कर दिया। इस बिल में बिल्डरों की मनमानी रोकने की कोशिश की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके इसे घर खरीदने की आस लगाए लोगों के लिए अच्छी खबर बताया। मोदी ने कहा कि यह बिल ज्यादा पारदर्शिता जवाबदेही सुनिश्चित करता है। हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने फाइट फॉर रियल एस्टेट एक्ट यानी रेरा के बैनर तले करीब एक साल से आंदोलन कर रहे फेडरेशन अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन के प्रमुख आलोक कुमार से बात की और पूछा कि ये कितनी बड़ी कामयाबी है।
ये बिल हम लोगों के लिए बहुत बड़ी उम्मीद की तरह आई है। हम लोग इसके लिए बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे इस बिल का। ये स्टेट सब्जेक्ट है और सरकार को इस बिल को अडॉप्ट करना है।
इस बिल से जो राज्यसभा में पास हुआ है इससे लोगों को क्या फायदा होगा?
एक तो सर बहुत बड़ा फायदा क्या है कि आज किसी आदमी को कोई प्रॉब्लम होता है रियल एस्टेट सेक्टर में तो उसे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है, ना पुलिस सपोर्ट करती है ना अथॉरिटी सपोर्ट करती है। बात यह है कि ये बिल सब लोगों के लिए है क्योंकि जो बिल भी जिस बिल्डिंग का भी कम्प्लीशन नहीं मिला है वो सारी बिल्डिंग इसके अंदर आ रही है। आज के डेट में 90% प्रोजेक्ट इंडिया में डिले चल रहा है। अभी बिल्डर केवल 5 रुपीज या मैक्सिमम 10 रुपीज पर स्क्वायर फीट डिले पेमेंट चार्जेस देता था, लेकिन ये बिल सबसे खास बात इसमें ये लेके आ रहा है कि उसे अगर वो 18% पब्लिक से चार्ज करता है डिले पेमेंट का तो उसे भी प्रोजेक्ट डिले होने पे 18% देना पड़ेगा। आज 6-6 साल में बिल्डिंग बनती है लेकिन ये बिल कहता है कि 2 साल में ही आपको बिल्डिंग बनानी है।
आप लोग फाइट फॉर रेरा जो चला रहे थे इस बिल के पास होने के बाद क्या आपका संघर्ष पूरा हुआ?
अभी संघर्ष पूरा एकदम नहीं है क्योंकि हमारे आगे अभी एक बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि ये रेगुलेटर अपॉइंट होना, आज भी हम लोग स्टेट के अलग अलग लॉ से लड़ते रहते हैं लेकिन उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती है तो हमें तो अब रेगुलेटर जो अपॉइंट होगा वो कैसे अपॉइंट करेगी स्टेट गवर्नमेंट, अब स्टेट गवर्नमेंट के साथ हमारी लड़ाई रहेगी क्योंकि उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी बहुत जरूरी है क्योंकि उनके पास पावर का मिसयूज ना होने लगे, तो हमें अब पूरी फोकस अब स्टेट पे देना है।
बिल में तो प्रावधान है कि हर राज्य में रेगुलेटर नियुक्त होना है, फिर उसमें दिक्कत क्या आनी है?
अभी भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हमारे यहाँ जो उत्तर प्रदेश में या महाराष्ट्र में मोफा है, यूपी में यूपी अपार्टमेंट एक्ट है, तो अपार्टमेंट एक्ट में भी प्रोविजन है सर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का। लेकिन अभी क्या है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जिसको इन सारे चीज का जिम्मा दिया गया है वो डेवलपमेंट अथॉरिटी के सीईओ होते हैं, जो वही सारा बिल वो सारा अथॉरिटी पास करते हैं और वही इंसाफ करने बैठते हैं कोई भी चीज का। हम अगर ग्रीवांसेस लेके जाते हैं तो कभी इंसाफ नहीं मिल पाता है। तो हमें ये लग रहा है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो बनाया जाए वो सेपरेट लोगों को बनाया जाए।
बिहार के नवादा जिले में मंगलवार की रात बड़ी संख्या में दलितों की झोपड़ियां जलकर राख हो गई। प्रभावित लोगों ने गांव के दबंगों पर आग लगाने का आरोप लगाया है, तो वहीं दूसरी ओर गांव का एक तबका इसे राजनीति से जोड़कर देख रहा है और दावा कर रहा है कि आग लोगों ने खुद ही लगाई है। हमारे सहयोगी नीरज सहाय ने नवादा के प्रभावित इलाके का दौरा कर लोगों से सच्चाई जानने की कोशिश की।
अभी मैं बिहार की राजधानी पटना से करीब 150 किलोमीटर दक्षिण में स्थित नवादा जिला के कझिया गांव के बाहर खड़ा हूं। यही वह जगह है जहां बीते मंगलवार की शाम को दलितों के लगभग 70 अस्थायी झोपड़ियां आग में जलकर राख हो गए थे। मेरे साथ हैं गांव के कुछ लोग, आइए उनसे बातें करते हैं। आप अपना नाम बताइए और क्या?
मेरा नाम चंद्रिका राजवंशी है, मैं महादलित परिवार से आता हूँ जी। मेरा पुराना मकान जो हमारे लगभग 150 घर की आबादी में हम लोग महादलित रह रहे हैं। हम लोग को बहुत परिवार है और रहने का जगह नहीं है सर, एक एक घर में 10-10 परिवार रह रहे हैं। तो हम लोग सोचे कि चलिए भाई, आगे मेरा बिहार सरकार की ज़मीन है, उस पर थोड़ा हम लोग चल जाते हैं तो जगह मिल जाएगा हम लोग वहाँ। सरकार द्वारा घोषणा आई है कि 3-3 जिसमें जिसके भूमिहीन परिवार को दिया जाए, तो हम लोग सोचे हमारे गाँव में है ही ज़मीन पर, हम लोग वहाँ पर बसा जाए। वहाँ पर कुछ लोग दबंग लोग यहाँ पर बसने हम लोग को नहीं देना चाहते, तो एक दो बार हम लोग को यहाँ पर से मैंने हटाया भी समझे इस लिया। उसके बाद भी हम लोग यहाँ झोपड़ा देख के हम लोग रह रहे थे। अचानक 8 तारीख को शाम 7 बजे के लगभग कोई अज्ञात लोग 4-5 आदमी से आए, हम लोग रोड पर बैठे थे समझे, और पीछे से माचिस मार के चला गया। हम लोग कुछ दौड़े तो जब तक भाग गया घर से। जिलाधिकारी DM साहब आए हैं अभी, मैंने जाँच पड़ताल करके गए हैं, कर्मचारी को आदेश दिए हैं कि बास्केट पर्चा दिया जाए।
हम लोग शिकायत दर्ज कराए हैं कि हमारा घर में आग लगा दिया गया, जो मान लीजिए हम बना रखे हैं झोपड़ी उसमें आग लगा दिया है। तो उन्होंने बोला है कि जो भी आपको मुआवजा मिलेगा सरकार तरफ से वो हम ज़रूर करवाएंगे, और इनके लिए सरकार से अगर कुछ अलग व्यवस्था करते हैं तो वो भी हम करेंगे।
घटना का एक दूसरा पहलू भी है, मिली जुली आबादी वाले इस गांव में जाने पर यह महसूस हुआ कि यहां शांति कायम है, लोग भी ऐसा ही चाह रहे हैं, लेकिन वे आगजनी की घटना को खारिज करते दिखे।
तो हम माहौल तो देखते हैं शांति, लेकिन ये लोग जब जब आता है इलेक्शन तभी माहौल जो तैयार करके रखते।
कौन लोग?
देखिए हरजन में भी 2-3 गो नेता है, और जादव में नेता है, भूमिहार में भी 2 गो नेता अपने को पूछ रहे हैं, सब वही नेता लोग हैं और यही करते हैं।
देखिए जो गाँव का सब माहौल सब सही है, एक एक है संदेगी में, ये सब कुछ बात नहीं है। रह सवाल है कि अब मुहर्रम के चीज़ वहाँ जगह है क्या है, वो जगह तो कुछ ऊपर से निकाल नहीं होगा संदेह। उसके बाद सरकार जिसको दे जिसको काम कर रहे संदेह की नहीं, इसलिए तो हम लोग लड़ेंगे जगह के लिए, तो हम लोग फेट करेंगे सर। मुहर्रम के लिए है, जितना का हम लिखा हुआ है कागज पत्र, वो आ रहे हैं बंगलोर से, आएंगे भाई हमारा तो वो आकर कागज पत्र दिखा देंगे संदेह की नहीं। अब कोई सब बात नहीं है, आग लगा तो सर अब उन लोग वही लोग लगाए हैं आग, जो तीसरा कोई नहीं लगाया,
गांव का कोई
नहीं लगाया, वो जो लगाए जिसका वहां पर है वही लोग लगाया।
आग लगी या लगाई गई, इस पर पीड़ितों का अपना पक्ष है तो गांव के सवर्ण और अकलियत समाज से आने वाले लोगों के अपने तर्क हैं। लेकिन इतना तय है कि वहां की गैर मजरुआ सरकारी जमीन पर दबदबा बनाए रखने की लड़ाई पंचायत चुनाव के ठीक पहले ग्रामीण सियासी हलचल की ओर इशारा कर रही है।
और अब जान लेते हैं कि देश और दुनिया की किन हलचलों पर रहेगी हमारी नजर।
दिल्ली में यमुना नदी के किनारे श्री श्री रविशंकर का 3 दिन का सांस्कृतिक महोत्सव आज से शुरू हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिस्सा लेंगे। बिहार में हाईस्कूल यानी 10वीं की परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं, इस दौरान नकल को रोकना अधिकारियों के लिए बड़ी चुनौती होगा। गुजरात में पटेल आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल की जमानत याचिका पर आज सूरत की अदालत फैसला सुना सकती है। T20 वर्ल्ड कप में आज 2 मुकाबले होंगे, दोनों ही मैच धर्मशाला में खेले जाएंगे। पहले मैच में नीदरलैंड्स और ओमान सामने होंगे, जबकि दूसरे मैच में बांग्लादेश और आयरलैंड भिड़ेंगे। जापान में 2011 में आई सुनामी को आज 5 साल पूरे हो रहे हैं, इस मौके पर वहां कई कार्यक्रम रखे गए हैं।
और एक बार फिर चर्चा भारत से। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी की चुनावी रणनीति को नई धार देने के मकसद से बुलाए गए प्रशांत किशोर के साथ गुरुवार को पार्टी अधिकारियों के साथ बैठक हुई। हमारे सहयोगी समीर आदमज मिश्र ने बात की कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खत्री से और सबसे पहले यही पूछा कि 1989 से सत्ता से बाहर रहने के बाद कांग्रेस किस तरह से खुद को इस बार लड़ाई में मान रही है।
देखिए, आज जो परिस्थितियां हैं वो परिस्थितियां हमको फेवर कर रही हैं और परिस्थितियों की शिकार पिछले 26 साल में कांग्रेस यहां पर हुई। परिस्थितियां फेवर ये कर रही हैं कि आज केंद्र सरकार से, मोदी सरकार से जनता ने जो आशाएं पाल रखी थीं वो उनसे निराश हुई है। लखनऊ में जिस पार्टी की सरकार है उसके लॉ एंड ऑर्डर से लोग त्रस्त हैं, क्योंकि सबको अपने जान माल की सबसे पहले चिंता होती है। और पिछले 26 साल में BSP, SP, BJP सबको कई बार जनता देख चुकी है, तो एक स्वाभाविक मन में जिज्ञासा पैदा हो रही है कि क्यों ना फिर से कांग्रेस को आजमाया जाए। ये ज़रूर है कि हम कितने कैपेबल हो करके उन सबको जोड़ सकें। तो जो हमारी रणनीति का अंग है वो ये कि सीन बहुत अच्छी है, परिस्थितियाँ बहुत अच्छी हैं, हम उसको भुनाने में कितने कारगर हों हम उसी दिशा में आगे बढ़ें।
1989 से कांग्रेस सत्ता में नहीं है, लंबा टाइम हो गया, और आप कह रहे हैं कि अब परिस्थितियां ऐसी हैं कि हम रिवाइव कर पा रहे हैं। पुरानी ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिसको कि एनालाइज किया गया है पार्टी में और उससे अब दूर रहा जाएगा, या उसको अब उस तरह की गलतियां दोबारा ना?
देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो गठबंधन की राजनीति थी और प्लस कुछ ऐसे भी इशू, यहाँ पर एक अयोध्या का इशू जो पैदा हुआ, मंडल कमंडल की राजनीति का उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा शिकार हुआ, और उस वक्त कांग्रेस को जिस तरीके से आगे बढ़ कर के इन विचारधाराओं के खिलाफ खड़े होना चाहिए था वो नहीं खड़ी हो पाई शायद, जिसका लाभ उन लोगों को मिला और वो मजबूत होते हुए चले गए और हम कमज़ोर होते हुए चले गए।
ये जो बात हो रही है गठबंधन की राजनीति की, आपने भी बात की और आपने अलायंस किया बिहार में और उसका बड़ा अच्छा फ़ायदा दिखा, कांग्रेस के पक्ष में आया। उत्तर प्रदेश में भी इसकी चर्चा हो रही है, क्या इसके बारे में कुछ अभी ठोस फैसला लेने की स्थिति में आई?
मैं समझता हूँ कि इस बारे में कुछ कहना बहुत टू अर्ली है,
पर किसी के साथ
लेकिन मैं समझता हूँ कि जो यहाँ पर मेजर दल हैं, जिस तरफ आप सोचते होंगे SP और BSP, मैं नहीं समझता कि इनके साथ कांग्रेस का कहीं से गठजोड़ होगा, क्योंकि बिहार की राजनीति में हमने लालू जी से और नीतीश जी से अगर पैक्ट किया तो इसलिए किया कि वो RSS की विचारधारा के खिलाफ खड़े थे, मोदी से लड़ रहे थे, और ये SP और BSP तो मोदी की गोद में बैठी है, हम इसके साथ पैक्ट कैसे करेंगे?
लेकिन कभी तो नीतीश कुमार तो लंबा समय उन्होंने बिताया था, तो
ठीक था वो पहले का जो समय था था, लेकिन जिस समय हमने पैक्ट किया उस समय वो मोदी और RSS की विचारधारा के खिलाफ खड़े थे, लड़ रहे थे।
सर, एक आखिरी सवाल, क्या रणनीतिक स्तर पे कोई बहुत बड़े बदलाव की उम्मीद कांग्रेस में दिखाई पड़ रही है? अब मेरा इशारा सीधे सीधे है कि क्या प्रियंका गांधी की भूमिका पर, किसी तरह की भूमिका पे कोई
ऐसी सूचना नहीं है।
ये थे कांग्रेस के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खत्री और उनसे बात कर रहे थे समीर आत्मज मिश्र।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 19, 25, 41 और 49 मीटर बैंड, यानी 5980, 7395, 11995, 15510 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर।
और अब समय है अखबारों की समीक्षा का। अशोक कुमार अखबारों के पन्ने पलट के स्टूडियो में आ चुके हैं।
जी, आज के अखबारों में दो बड़ी खबरें, एक तो श्री श्री रविशंकर का कार्यक्रम और दूसरा है प्रॉपर्टी बिल जो कल राज्यसभा में पारित हो गया। द हिंदू लिखता है RS पासिस लॉन्ग अवेटेड बिल टू प्रोटेक्ट होम बायर्स। अमर उजाला की सुर्खी में इसका अनुवाद छिपा है, मकान के खरीदारों को बड़ी राहत, बिल्डरों की मनमानी रुकेगी। वहीं दैनिक जागरण ने लिखा है बिल्डरों पर लगाम, हिंदुस्तान की सुर्खी है बिल्डर ने धोखा दिया तो 3 साल की होगी जेल। चलते हैं दूसरी तरफ, जेल चले जाएंगे लेकिन एक भी पैसा नहीं देंगे, ये बयान है श्री श्री रविशंकर।
कल उन्होंने स्पष्ट किया उनके प्रवक्ता ने,
लेकिन आज के अखबारों ने, तमाम अखबारों में यही सुर्खी है। अमर उजाला, हिंदुस्तान, दैनिक भास्कर, सब में इसी बयान को उनके सुर्खी बनाया गया है। दरअसल श्री श्री रविशंकर पर ग्रीन ट्राइब्यूनल की तरफ से जो 5 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है उसको वो चुनौती दे रहे हैं, ऐसा ही अखबारों की खबरें कह रही हैं। हिंदुस्तान टाइम्स ने वहीं जुर्माने देने के लिए जो एक दिन की मोहलत दी गई है उन्हें, उसको हेडलाइन बनाया है श्री श्री आर्ट ऑफ लिविंग गेट्स वन मोर डे टू पे फाइन। आगे बढ़ें तो विजय माल्या को लेकर जारी घमासान अखबारों के पहले पन्ने पर छाया हुआ है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, माल्या भाग गए लेकिन विपक्ष ने सरकार को घेरा। नई दुनिया में राहुल,
लेकिन हमने पढ़ा कि ट्वीट में कहा है कि भागे नहीं है और बिजनेसमैन है, वो आते जाते रहते हैं,
लेकिन कहाँ है ये नहीं बताया अभी। नई दुनिया में राहुल गांधी का बयान है और उसी को सुर्खी बनाया गया है कि जेटली नहीं बता पा रहे हैं कि कैसे भागे माल्या। वहीं कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा है, परियों के संग घूमने वाला कैसे भाग गया। द हिंदू के पहले पन्ने पर खबर है, पाकिस्तान वॉन्ट सेंड टीम विदाउट गवर्नमेंट्स अश्योरेंस ऑन सिक्योरिटी। ये बयान पाकिस्तान के गृह मंत्री चौधरी निसार अली खान का है, जो उन्होंने अपनी टीम के भारत आने के बारे में दिया है। T20 वर्ल्ड कप में खेलने के लिए पाकिस्तानी टीम भारत आएगी या नहीं आएगी, शायद आज इस बात से पर्दा उठ जाएगा। स्टेट्समैन के पहले पन्ने पर एक और खबर है, कन्हैया अटैक्ड इन JNU कैंपस, यानी कन्हैया पर JNU के कैंपस में हमला हुआ। अमर उजाला में भी ये खबर है, जिसके मुताबिक गाजियाबाद के एक युवक ने कन्हैया को थप्पड़ मारने का प्रयास किया। बताया जाता है कि ये युवक सेना के बारे में दिए गए कन्हैया के बयान से आहत था। नई दुनिया ने इसे सुर्खी दी, बाहरी युवक ने JNU में कन्हैया पर हमला किया।
बहुत बहुत शुक्रिया अशोक कुमार आपका। और अब समय है खेल की खबरों का।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं रजत चांदना। कोलकाता में भारत और वेस्ट इंडीज के बीच कल हुए ICC वर्ल्ड T20 अभ्यास मैच में भारत ने वेस्ट इंडीज को दी 45 रनों से मात। भारत के 186 रनों के लक्ष्य के जवाब में वेस्ट इंडीज का पहला विकेट जल्दी गिर गया। क्रिस गेल को जसप्रीत बुमराह ने 20 रनों पर बोल्ड कर दिया। उसके बाद चोट के बाद टीम में वापसी कर रहे मोहम्मद शमी ने वेस्ट इंडीज की एक और विकेट चटकाई और 18 रनों पर जॉनसन चार्ल्स को पवेलियन भेजा। इस तरह विकेट गिरने का सिलसिला जारी रहा और वेस्ट इंडीज की टीम 140 रनों पर ऑल आउट हो गई। भारत के लिए मोहम्मद शमी और पवन नेगी ने 2-2 विकेट लिए। वहीं बल्लेबाजी में भारत के लिए रोहित शर्मा ने नाबाद 98 रनों की पारी खेली, जिसकी मदद से 20 ओवर में भारत ने 6 विकेट के नुकसान पर 185 रन बनाए। यही नहीं, युवराज सिंह ने भी अपने बल्ले से कमाल दिखाया और 20 गेंदों पर 31 रन बनाए। पूर्व भारतीय खिलाड़ी निखिल चोपड़ा ने बताया कि इस जीत से भारत का मनोबल बढ़ेगा।
आगाज विश्व कप चाहे अभ्यास मैच से ही जीत के साथ शुरू हुआ, लेकिन बहुत जरूरी था कि एक विनिंग नोट पे भारतीय टीम का विश्व कप अभियान है वो एक जीत के साथ शुरू हो। और जिस तरीके से रोहित शर्मा ने पारी खेली, युवराज सिंह ने, भारतीय टीम में अगर आप देखें पहले से लेकर 7वें नंबर तक कमाल के मैच विनर्स हैं। कोई भी एक बल्लेबाज खड़ा हो जाता है जिसको स्टार्ट मिलता है, 30-32 रन की शुरुआत होती है, उसको अब ये समझ में आ गई उसकी विकेट की अहमियत क्या है। उसके बाद उसको अपने स्कोर को तब्दील करना है एक मैच विनिंग स्कोर में, और यही 6 के 6 बल्लेबाज भारतीय टीम के इस समय मैच विनर्स हैं।
वहीं ईरानी ट्रॉफी में शेष भारत ने 480 रनों के लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल करके मुंबई को 4 विकेट से हराया और ईरानी कप को अपने नाम किया। सलामी बल्लेबाज फैज फजल ने शतक जड़ा। फजल ने 127 रन और करुण नायर ने 92 रनों की पारी खेली और 5वीं और आखिरी दिन 6 विकेट पर 482 रन बनाकर शेष भारत ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की। ईरानी ट्रॉफी में ये सबसे बड़े लक्ष्य का नया रिकॉर्ड है।
और अब हम पहुंच चुके हैं कार्यक्रम के अंत में, सुनिए प्रमुख समाचार अशोक कुमार से।
BBC समाचार। कई दिनों से विवादों में रहा आर्ट ऑफ लिविंग का सांस्कृतिक समारोह आज से दिल्ली में यमुना नदी के किनारे होगा। श्री श्री रविशंकर के इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने छोटे हथियारों के साथ और अधिक परमाणु परीक्षण करने का आदेश अपने वैज्ञानिकों को दिया है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून ने संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों पर लगने वाले यौन उत्पीड़न और शोषण के आरोपों को लेकर कड़े कदम उठाने की अपील की है। अमरीकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने इन खबरों की पुष्टि की है कि विशेष अमरीकी बलों ने इराक में चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट के रासायनिक हथियार विशेषज्ञ को पकड़ा है। और अमरीकी मीडिया का कहना है कि रिपब्लिकन उम्मीदवारी की रेस से हटने वाले बेन कार्सन अब रेस में सबसे आगे चल रहे डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन करेंगे। ये खबर फ्लोरिडा में होने वाली रिपब्लिकन डिबेट से ठीक पहले आई है। BBC समाचार।
इसके साथ ही नमस्कार भारत का ये अंक यहीं समाप्त होता है। स्टूडियो संभाला राजेश चौहान ने, पंकज प्रियदर्शी और अशोक कुमार को अनुमति दीजिए। अब से ठीक 1 घंटे बाद 8 बजे विश्व भारती में आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।